ओम शांति। बाबा ने ये बेहद का अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना आज से 85 साल पहले किया था। शास्त्र में आता है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, लेकिन वास्तव में शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये बेहद का यज्ञ रचा है। कई बार बाबा ने मुरली में हम बच्चों को कहा है कि बच्चे, दुनिया में कोई बड़ा सेठ होता है और वो सेठ यज्ञ रचता है, तो वो यज्ञ के पीछे विशेष एक उद्देश्य होता है और यहां शिव बाबा बड़े से बड़ा सेठ जिसने ये यज्ञ रचा और 85 साल तक निरंतर चलता रहा है। दुनिया का कोई भी सेठ होता है तो बहुत बहुत तो हफ्ता 10 दिन तक का उनका यज्ञ होता है, एक महीने तक का होता है, उससे आगे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी जब यज्ञ होता है तो उसमें तीन चीजें होती है। पहला तो उस यज्ञ को संभालने वाले या उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, विधिवत पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। दूसरा कि उसमें यज्ञ कुंड चाहिए और तीसरा उस यज्ञ कुंड के अंदर हवन में स्वाहा करने की सामग्री चाहिए। ये तीन चीज अनिवार्य है। तो बाबा ने भी ये बेहद का जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सर्वप्रथम हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को निमित्त बनाया है ताकि विधि सर हम इस यज्ञ को पूर्ण करें। दूसरा, यज्ञ कुंड चाहिए जिस कुंड के अंदर अग्नि होती है। तो बाबा ने ये जो गीता ज्ञान यज्ञ रचा है उसके अंदर निरंतर जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो है योगाग्नि, जो निरंतर उसमें प्रज्वलित होती रहती है। और तीसरा कि इस यज्ञ कुंड के अग्नि में स्वाहा करने के लिए सामग्री चाहिए, तो वो सामग्री बाबा ने दिया है तिल जौ और घी, अर्थात तन मन और धन का संपूर्ण शुद्धिकरण, क्योंकि यही अशुद्ध हुआ है तो इस योगाग्नि के द्वारा मन के विचारों का शुद्धिकरण, हमारे तन जो एकदम पतित हो गया है उसको पावन करना या प्रकृति को पावन करना, और तीसरा जो धन है उस धन का भी शुद्धिकरण हो रहा है। अर्थात साधन को लगाते हैं तो उनका सफल हुआ तो सफल होने का पुण्य उसको प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए तन मन और धन ये स्वाहा करने की सामग्रियां हैं। दूसरा, जैसे शास्त्रों के अंदर दिखाया जाता कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उस समय असुर आकर के हड्डियां डालते थे, मांस डालते थे और उस यज्ञ को अशुद्ध करते थे। तब कहा जाता है कि विश्वामित्र जी आए और श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले गए कि भई ये ऋषि मुनियों की यज्ञ की संभाल करनी है या असुरों से उनको मुक्त करना है। वैसे शास्त्र के अंदर ये दिखाया है कि अकेला विश्वामित्र ही काफी था उन ऋषियों के यज्ञ की संभाल करने के लिए, उन्हें श्री राम लक्ष्मण की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास इतनी सिद्धि थी, शक्ति थी जो वो खुद असुरों को समाप्त कर सकते थे। तो इसी प्रकार एक बात याद आती है कि एक बार अव्यक्त बाप दादा जब पांडव भवन में, ओम शांति भवन में आए थे तो उस समय सारी रात बाबा का प्रोग्राम चलता था और फिर लास्ट में कई लोग टोली लेने के लिए बाबा के पास आते थे। तो उस समय बाबा ने विशेष सिक्योरिटी वालों को याद किया और जब वो सिक्योरिटी वाले टोली लेने बाबा के पास आए तो बाबा ने पूछा, क्या यज्ञ की संभाल करते हो, यज्ञ की रक्षा करते हो? वैसे तो यज्ञ रक्षक बाप है, बाबा ने उस समय कहा कि बाप ही यज्ञ की रक्षा करते हैं, आप करते हो या बाप करते हैं? तो जब सभी ने कहा बाबा आप ही करते हो तो फिर सिक्योरिटी की जरूरत है क्या? तो उस समय बाबा ने ये बात कही थी कि वास्तव में जो सिक्योरिटी वाले रात को जागते हैं और बाबा की याद में रहते हैं तो वो रात भर उस यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं और जहां याद की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां कभी भी कोई आसुरी जो तत्व है, वाइब्रेशन है, वो उस यज्ञ को के समीप नहीं आ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने शुरू में दादियां सिक्योरिटी करती थी, उसके बाद जब भाइयों का समर्पण होने लगा तो भाई लोग समर्पित यज्ञ की सिक्योरिटी करते थे। कहने का भावार्थ वो निरंतर योग अग्नि को प्रज्वलित रखते थे और उस योग अग्नि को प्रज्वलित रखने से वो वाइब्रेशन का अशुद्धिकरण नहीं होता, वहां उस एरिया में कभी भी कोई इविल वाइब्रेशंस आ नहीं सकता है, घुस नहीं सकता है। तो इसी तरह विश्वामित्र जी अकेले ही काफी थे ऋषियों के यज्ञ की संभाल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो श्री राम लक्ष्मण को लेके गए। कहने का भावार्थ यही है कि जो यज्ञ के अंदर अशुद्धि पड़ती थी वो अशुद्धि वास्तव में किस चीज की थी? तो कहा हड्डियां और मांस डालते थे। तो हड्डियां और मांस मतलब ये है के दैहिक आकर्षण और देह अभिमान, देह अभिमान की हड्डियां और दैहिक आकर्षण का मांस। तो जब यज्ञ के अंदर भी अगर कभी बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव अपने अंदर जागृत करना है, और हमेशा इस चीज का अटेंशन रखना है कि बाबा ने जैसे कहा आत्मस्थिति, दैहिक आकर्षण और देह अभिमान को समाप्त करने के लिए जो लक्ष्य हमें मिला है, लक्ष्य मन जो है, मन को जो लक्ष्य मिला है वो है कि आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति को हमें विकसित करनी है, क्योंकि तब हम ये यज्ञ को उस हड्डी गिरने से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, कभी भी देखा जाता है कि जैसे कोई बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स होता है, वो सिक्योरिटी फोर्स अगर बॉर्डर की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सामने जाकर खड़ा हो जाएगा, नहीं, उसमें वो पहले स्वयं की रक्षा करता है, क्योंकि स्वयं की रक्षा करेगा तभी वो बॉर्डर की रक्षा कर सकता है, उस देश की रक्षा कर सकता है। कि किसी तरह यज्ञ की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम मुझे स्वयं की रक्षा करना आवश्यक है, और स्वयं की रक्षा करने के लिए ये पांच बातें बहुत आवश्यक है कि जिससे हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। पहली बात, स्वयं की रक्षा करने के लिए चाहिए स्वचिंतन, क्योंकि यज्ञ के अंदर अगर वातावरण को अशुद्ध करता है तो वह तभी होता है जब पर चिंतन, पर दर्शन आरंभ होता है, और इस तरह कोई भी व्यक्ति का चिंतन, किसी के अवगुणों का चिंतन, किसी के भी बातों का चिंतन, वो न सिर्फ वातावरण को अशुद्ध करता है लेकिन जो उसके विकर्म है उस विकर्म से हम उसके विकर्म को बांटते हैं। इसीलिए जैसे दुनिया में कहा जाता है कि भाई अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसका पाप का घड़ा भरता है, और घड़ा भरता है तो आप ही फूटता है, लेकिन अगर उस घड़े को भरते भरते लोग उसमें से निकाल ले तो वो घड़ा तो भरता ही नहीं है ना। तो पर चिंतन किया माना हमने उसके पाप के घड़े से निकाल निकाल करके अपने घड़े में डाला। इसीलिए कई बार हम देखते हैं जो बुरा कर्म करने वाला है वो तो मौज से जीता है, लेकिन दूसरे जो पर चिंतन करने वाले हैं वो दुखी हो जाते हैं, उनका योग नहीं लगता है, वो योग में बैठते तो भी वही चिंतन चलता है, उनकी खुशी गायब हो जाती है और वो मौज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिंतन करके हमने उसकी चीजों को, जो बाबा जैसे कहते हैं कि किसी का चीज अपने तरफ ले लेना, किसी के अवगुणों का चिंतन करना, माना उसके अवगुणों को हम अपने झोले के अंदर डालते जाते हैं, इसीलिए उसका वो घड़ा भरने नहीं देते क्योंकि उसमें से निकाल लिया गया। तो स्वचिंतन बहुत जरूरी है, पर चिंतन पर दर्शन करके वायुमंडल को खराब करना, तो यज्ञ रक्षक कहां हुए हम? इसीलिए जैसे आरंभ में दादियों को देखा कि दादियों ने कभी एक दूसरे का परचिंतन नहीं किया, वो एक दूसरे को समझते रहे और उनको समाते रहे, उनकी बातों को भी समाते रहे। ये नहीं कि यज्ञ में जो भी दादियां आई थी सब परफेक्ट थी, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ कमी कमजोरी थी, लेकिन फिर बढ़ते जाना है दादियों की तरह, और इसके वायुमंडल को सदा शुद्ध रखने का प्रयास करना है। अगर चिंतन करना ही है तो भगवान ने जब उनको भी चुना था, कोई ना कोई विशेषता देख करके चुना था, उस विशेषता को देखते हुए उनके प्रति भी शुद्ध संकल्पों का दान करें, ये स्वचिंतन करें, शुभ चिंतन करें, तब हम कहेंगे कि हाँ हम सही में यज्ञ रक्षक हैं। जितने किसी की भी बात को हम फैलाते जा रहे हैं तो हम यज्ञ रक्षक नहीं कहलाते हैं। दूसरी बात, स्वाध्याय, स्वचिंतन के साथ साथ स्वाध्याय बहुत जरूरी है कि बाबा ने जो हमें पढ़ाई दी है उस स्व के अध्ययन में हम रहे, मुरली की बातों का मनन चिंतन करते जाएं। जितना मुरली को हम अध्ययन करते जाते हैं, मुरली को अगर हम अपने जीवन के अंदर उसको समाते जाते हैं, उतना हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, और इसीलिए शायद कलयुग के अंदर भी अंत तक स्वाध्याय चलते रहते हैं सत्संग के रूप में। तो ये स्वाध्याय जरूरी है। तीसरा है कि बाबा ने हमें श्रेष्ठ स्वमान दिए हैं, उस स्वमान की स्थिति में सदा स्थित रहना, क्योंकि जितना उस स्वमान की स्थिति में हम स्थित रहते हैं, हम अपने भी चारों ओर एक ऐसा ओरा विकसित करते हैं कि जिस ओरा में हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए स्वाध्याय के साथ साथ स्वमान में स्थित होना। चौथा है कि जो बाबा ने संयम नियम दिए हैं हम बच्चों को, उन संयम नियमों को बहुत अच्छे से पालन करना, ये है यज्ञ की सुरक्षा रखना या यज्ञ के वातावरण का को शुद्ध रखना। दुनिया में इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये जो नियम है वो हटा दिए जाए फिर तो भीड़ लग जाए कि इतना ऊंचा ज्ञान है आपका। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे हमको भीड़ थोड़ी चाहिए। जो संयम नियम पर चलते हैं ऐसे क्वालिटी चाहिए बाबा को। कहीं पर भी उस संयम नियम के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, ये यज्ञ के अंदर विघ्न डालने बराबर है। इसीलिए उससे अपने आप को सुरक्षित रखना, ये हमारी सेफ्टी का साधन है। सिंपल कभी कभी बाबा कहते बच्चे बैज लगा करके रखना, कहीं भी बाहर जाओ तो, ये आपके सेफ्टी का साधन है। और देखा गया है कि जिसने बैज लगा करके जब भी बाबा की उस श्रीमत को भी पालन करके गए कहीं भी, वो सेफ भी रहे हैं और उनको कहीं न कहीं लोगों ने ये इज्जत दिया, अच्छा आप बीके हैं, और बीके है करके उनको कई बार नौकरी मिल गई, कई बार उनको कहीं स्थान मिल जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि ये संयम नियम वास्तव में हमारी ही सेफ्टी का आधार है। और पांचवा है कि जो बाबा की हर बातें हैं उसको बैलेंस रखते हुए संतुलन में चलना और चलाना। तो ये पांच स, स्वचिंतन, स्वाध्याय, स्वमान, संयम और संतुलन, इससे हमें अपनी स्वयं की रक्षा करनी है, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा करता है वही यज्ञ रक्षक बन सकता है। यज्ञ के अंदर जो विघ्न आते हैं अभिमान जिसको बाबा ने एक शब्द में समेट लिया कि नाम मान शान की जहाँ प्राप्ति की इच्छा होती है, वो देह अभिमान को जैसे पोषने वाली बात है। तो जहाँ देह अभिमान का पोषण करते हैं नाम मान शान के आधार पर, तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और ये सबसे बड़ा विघ्न यज्ञ के अंदर पड़ता है। क्योंकि जहां ये अभिमान को पोषा, जब तक उसका पोषण करते रहे किसी भी विधि से और ये बढ़ता गया, और जिस दिन उसका पोषण नहीं हुआ तो क्या होगा, अपमान की फीलिंग, अपमान महसूस करेंगे। और जहां खुद का अपमान महसूस हुआ तो वो दूसरे का अपमान किए बिगर रहेगा नहीं। इसीलिए जो कहा कि यज्ञ के हवन कुंड में जो सामग्री है, मन वचन कर्म को स्वाहा करना, तन मन धन को स्वाहा करना, मन वचन कर्म संकल्पों को, अशुद्ध संकल्पों को, अशुद्ध वाणी को स्वाहा करना, क्योंकि जहां अपमान हुआ ये महसूस आई, वो अक्सर दूसरे का अपमान करता ही है। और अपमान करने के लिए अशुद्ध शब्दों का प्रयोग, अयोग्य शब्द का प्रयोग जरूर करेगा, उससे और ही वातावरण की शुद्धि के बजाय अशुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए ये सर्वप्रथम विघ्न है। दूसरा विघ्न आता है स्वभाव संस्कार का। जहां संगठन में है तो संगठन का किला मजबूत करने की बात आती है, और संगठन के किले को मजबूत करने के लिए संस्कारों को मिला करके चलने की बात है। लेकिन जहां संगठन में अगर स्वभाव संस्कार टकराना आरंभ करे तो वह भी अशुद्धि को क्रिएट करता है। इसलिए यज्ञ रक्षक जो बनना है हमें, वो संस्कार मिलन या अशुद्ध संस्कारों का संस्कार करने की बात है, तो दृढ़ संकल्प के आधार से स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना, श्रेष्ठ संस्कारों को निर्मित करना और संस्कार मिलन की रास करना। क्योंकि जहां रास नहीं होंगी तो वहां क्या होगा, केओस होगा, और वो केओस तो क्या करेगा, अनेक प्रकार के गलत फहमियों को जन्म देगा। और वहां पर जो तालमेल होता है या यज्ञ जिस स्मूथनेस के साथ चल रहा था उसके अंदर विघ्न शुरू होते हैं। तीसरा है कि हमेशा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये है यज्ञ रक्षक बनना। और वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए हमारी वृत्ति को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। तो इसीलिए वृत्ति कैसे बनती है, वृत्ति शब्द निकला है वृत्त सर्कल, अर्थात जब हमारे संकल्पों का वृत्त चालू होता है, कोई भी संकल्प बार बार हम करते रहते हैं तो ये है संकल्पों के वृत्त से वृत्ति निर्मित होना। और जितनी बार हम संकल्पों के वृत्त में चलते रहते हैं और इस आधार से अपनी वृत्ति को बनाते हैं तो वो वृत्ति वायुमंडल के अंदर प्रवाहित होती है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए ये वायुमंडल को पावरफुल बनाने की जिम्मेवारी बाबा ने दी है, इस वायुमंडल को अशुद्ध बनाने की जिम्मेवारी नहीं है, नहीं तो वो बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके इस वायुमंडल को पावरफुल बनाना है अपनी वृत्ति, पावरफुल वृत्ति के आधार पर। चौथी बात के बड़े सेठ ने ये यज्ञ तो रचा है, मुताबिक गरीब निवास है, गरीब निवास है, गरीबों की एक एक पाई इसमें सफल हो रही है और भगवान उनकी सफल कर रहा है। लेकिन जो यज्ञ को संभालने वाले हैं, अगर उस जिसने सफल किया उसका तो भाग्य बन गया, लेकिन जो उस सफल करने वाले में जिसने सफल किया वो तो भाग्य बना दिया, लेकिन जिसने उसको यूज किया, उसने अगर इकोनॉमी से यूज नहीं किया तो ये भी एक बहुत बड़ा बोझ है। ये यज्ञ रक्षक बनना नहीं है। धन को हमने अगर इकोनॉमी से यूज नहीं किया, उस धन को उड़ाया, जैसे आया मर्जी अपनी रीति से यूज किया, तो ये सबसे बड़ा विघ्न है यज्ञ के अंदर। उसकी रक्षा हमें करनी है। इसीलिए बाबा ने हमेशा माताओं बहनों को क्यों रखा था? माताओं बहनों को इसीलिए रखा था ताकि जिस तरह एक परिवार के अंदर वो एक पाई पाई को किस तरह से इकोनॉमी करके यूज करती है, सफल करती है, इसलिए बाबा ने बहनों को रखा था। लेकिन कई बार जैसे परिवार के अंदर बच्चे को जब वैल्यू नहीं होती है, कमाया नहीं होता है तो वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही वर्षे के रूप में मिल जाता तो वो उड़ाने में लग जाते हैं, और जब उड़ाते हैं तो क्या होता है, आखिर उस कॉन्सिक्वेंस को भी उसी को फेस करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि समझदार माता पिता होते हैं जब देखते हैं कि बच्चा उड़ाने वाला है, उसके ऐसे गलत संस्कार, गलत संग, गलत बातें आ गई है, गलत आदत आ गई है, तो ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट बना करके उसमें दे करके जाते हैं ताकि उसको थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, क्योंकि मालूम है नहीं तो ये उड़ा करके खत्म कर देगा। ठीक इसी तरह बाबा का इस बेहद के यज्ञ के अंदर जिस गरीबों की एक एक पाई लगी हुई है, जो यज्ञ निवासी है, हाँ वो कोई कमाने नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर वो उसमें बचत करते हैं, कम खर्च वाला नशीन उसमें बचत करते हैं, तो उस बचत से वो उसके खाते में जमा हो जाता है, और उसके खाते में जिस तरह से धन जमा हो जाता है, फिर ये यज्ञ की संभाल किया, ये यज्ञ रक्षक हम बने। इसीलिए इकोनॉमी से जो चलता है, भाई जहाँ लाइट चल रही है चलने दो, कोई बात नहीं, जहाँ पानी बह रहा है बहने दो, कोई बात नहीं, नहीं। इसीलिए हर बार सीजन में भी जब आते हैं लोग तो भी ये अनाउंसमेंट कि लाइट पंखा बंद करना, यज्ञ की ये भी इकोनॉमी करने वाले, तो उसके खाते में उतना जमा होता है। तो इस तरह से जो हर चीज में इकोनॉमी करते हैं, तो इकोनॉमी करने वाले का धन इतना जमा हो जाता है जितना शायद वो सफल करने वाले का जमा हुआ, उतना ही उसका भी जमा हो जाता है। इसीलिए यज्ञ रक्षक अगर सही रीति से अगर हमें बनना है, तो उसका मतलब ही है कि ये कम खर्च वाला नशीन जो बाबा ने मंत्र दिया है, जिससे हम धन का भी सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब ये नहीं कि हाँ हम बहुत ज्यादा एक जगह से तो कम किया दूसरी जगह उसको लगाते जाए, नहीं, जहाँ कम करना है वहीं कम करते जाए। और इसीलिए वायुमंडल की सुरक्षा करना, स्वभाव संस्कार के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल करके चलना और धन की इकोनॉमी करना, ये है सही स्वरूप से यज्ञ रक्षक बन करके चलना। बाकी तो छोटी छोटी बातें और भी बहुत है, सूक्ष्म बातें कि किस तरह से हम यज्ञ रक्षक सही रूप से बन सकते हैं, ये तो कुछ मोटी बातें मन के अंदर जो आई वो बताया। बाकी लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि स्वयं रक्षक यज्ञ रक्षक बनने वाला जरूर मर्यादा रक्षक बनता ही है। अर्थात बाबा ने जो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म मर्यादाएं भी दी हैं, उसकी जब रक्षा करते हैं तब हम यज्ञ रक्षक सही रीति से बन सकते हैं। और उसमें जैसे सीता मैया के लिए दिखाते हैं कि वो रावण की जेल में क्यों पहुंच गई, पांच बातों के कारण पहुंच गई। पहली बात, सोने हिरण के पीछे आसक्ति। दूसरी बात, जिद, कोई भी बात की जिद करना। तीसरी बात, परखने की शक्ति नहीं, श्री राम का आवाज नहीं था ये परखने की शक्ति नहीं थी। चौथी बात, लक्ष्मण को विवश किया जाने के लिए अपने ऐसे कुछ वचन बोल करके, अमर्यादित वचन बोल करके। और पांचवी बात कि रावण के स्वरूप को भी पहचान नहीं सकी और मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया। तो ये पांच बातें जहां है वहां यज्ञ रक्षक हम कभी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहे, आसक्ति यानी भौतिक आकर्षण के पीछे नहीं जाना है, दूसरा जिद में नहीं आना है, तीसरा परख शक्ति को विकसित करें, चौथा जो मर्यादा की लकीर है उसके अंदर रहना, और मधुर वचनों के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना। तो ये पांच बातें जहां है तो सही में मर्यादा की रक्षा करते हुए हम यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। ओम शांति।
आपका दर्शन करें।